پوری صورت میں اللہ نے فرض چیزیں ہمیں بتائیں. اب اطاعت رسول کا حسن بتایا گیا کہ جب تک اللہ کے رسول کی بات نہیں مانو گے تب تک تمہیں بات سمجھ نہیں آئے گی. تو دعا کرتے ہیں کہ اتنا کچھ سننے کے بعد ہمیں اللہ کے رسول کے طریقوں پہ چلنے کی توفیق ہو. یہ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر, ہم نے اطاعت قبول کی, مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے. ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں. جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کرے, تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے. کچھ لوگ ایوائڈ کرتے ہیں رسول کو. کیوں؟ رسول کی بات سنی, سنت مسئلہ پتہ لگ گیا تو زندگی بورنگ ہو جائے گی. یہ ایٹیچیوڈ ہے ان کا. البتہ اگر حق ان کی موافقت میں ہو تو رسول کے پاس بڑے اطاعت کیش بن کر آ جاتے ہیں. یعنی کوئی حدیث اپنے حق میں ملتی تو ہو, سب کو جا کے سنائیں گے. دیکھو اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے. کہ ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے, یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں, یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا. تین ڈاؤٹس ہیں اس میں, ہائی لائٹ کریں. آج بھی مسلمانوں کے یہ ڈاؤٹس ہیں, کتنی اللہ اور اس کا رسول دین کو سخت کر دے گا, یا پھر شک ہے, یا پھر یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں ہم ان طریقوں پہ چلیں گے تو ہماری زندگی جو ہے وہ انجوائنگ نہیں رہے گی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اصل بات یہ کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں. ایمان لانے والوں کا کام کیا؟ یہ 51 کو ہائی لائٹ کریں اور اس کے نیچے مومنین کے نیچے اپنا نام لکھ لیں اور دعا کریں کہ اللہ میرا یہ قول بن جائے. کیا؟ انما کان قول المومنین, سوائے اس کے نہیں ہے قول ایمان والوں کا کہ جب کبھی ان کو پکارا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کریں تو وہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا, ہم نے سنا اور ہم مانیں گے. دعا کریے اللہ ہمیں بھی اسی کی توفیق دے. ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں, اور کامیاب وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں. اس کے برعکس منافقوں کی صفات, وَقْسَمُ بِاللَّهِ جَخْدَ اَيْمَانِهِمْ, یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں. یعنی آپ بات کر کے تو دیکھیں, آپ کہہ کے دیکھیں, ہم تو آپ کے لیے جان بھی دے دیں گے. ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ, تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے, اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں. کہو اللہ کے مدعی بنو اور رسول کے تابع فرمان بن کے رہو, لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم پر جس فرض کا بوجھ ڈالا گیا اس کے ذمہ دار تم ہو. ہائی لائٹ کریں, ہم جلدی میں غور کرنا نہیں چھوڑیں گے اس آیت پہ. اللہ کہہ رہے رسول کو جو بوجھ دیا تھا, کام دیا تھا, وہ کر گئے ماشاء اللہ, شہادت حق کی گواہیاں دے گئے. امت مسلمہ تم تیار ہو اللہ کو جواب دینے کے لیے کہ جو ذمہ داری تمہیں دی تھی اس کو ادا کیا کہ نہیں؟ ہاں بھائی, تو تیوہ تحت دو, اگر تم اطاعت کرو گے تو ہدایت پالو گے, نہیں کرتے تو وما علی الرسول الا البلاغ المبین, تو رسول کے ذمہ صاف صاف حکم پہنچانے کے سوا اور کچھ بھی نہیں. اب آیت 55, میرے اور آپ کے خوبصورت روشن مستقبل کی ضمانت. بہت خوبصورت آیت ہے. اس آیت کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ امت مسلمہ جب صحیح مسلمان بن جائے گی اس کا مستقبل کتنا روشن ہے, کیونکہ اللہ نے وعدے کا لفظ استعمال کیا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا, اور ان کے لیے ان کے دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرے گا جسے اللہ نے ان کے حق میں پسند کیا, اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا. ہائی لائٹ کریں, آج ہے مسلمان سکیئرڈ. اللہ کہتا ہے تم ایمان کے تقاضے پورے کرو, تمہارا سب سکیئرینس ختم, تمہارا روب آ جائے گا بجائے اس کے کہ تم مروب ہو. اور اللہ وہ وقت جلدی لا کہ ہم مسلمانوں کے دلوں سے خوف نکل جائے, بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. نسخہ بھی مل گیا. اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں. نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, امید ہے کہ تم پہ رحم کیا جائے گا. جو لوگ کفر کریں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے, ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہم لا تجعلنا منہم, پیچھے حکم گزر چکا کہ کس طرح گھروں میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے اجازت لو, اب بالکل کلوز سرکٹ میں بچے ماں باپ کے کمرے میں کس وقت آ سکتے ہیں کس وقت نہیں آ سکتے, اجازت لی جائے گی نہیں لی جائے گی, یہی بات اب آگے سکھائی جا رہی ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لازم ہے کہ تمہارے لونڈی غلام اور تمہارے وہ بچے جو بھی عقل کی حد تک نہیں پہنچے تین اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں. کون سے؟ ہائی لائٹ کر لیجئے, صبح کی نماز سے پہلے. عام طور پہ پرائیویسی کا وقت ہوتا ہے, انسان اپنے آپ کو پاک کر رہا ہوتا ہے, نماز کی تیاری میں ہوتا ہے, और दोपहर को जबकि तुम कपड़े उतार कर रख देते हो, यानी घर में कैलूला करते हो, ऊपर के कपड़े चादरें अबाए बाज़ मर्ज कमीज उतार देते हैं, तो ऐसे वक्त में अगर घर में कमरे में कोई आ जाए तो एम्बेरसमेंट होगी। और तीसरा वक्त ईशा की नमाज के बाद, ये तीन वक्त हैं तुम्हारे लिए पर्दे के, इसके बाद वो बिला इजाजत आए तो तुम पर कोई गुनाह नहीं ना उन पर। तो बच्चों को शुरू से ये ट्रेन कीजिए, छोटे बच्चों को कभी इजाजत ना दें कि बगैर नौक की आपके कमरे में आ जाए, चाहे वो मस्जिदों के डोर हो। इतनी आदत हो जाए कि जहां डोर बंद है नॉक करके इजाजत लेकर फिर अंदर आए। फरमाए तुम्हें एक दूसरे के पास बार बार आना ही होता है, इस तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अपने इरशादात को वाजे करता है, वालीम और हकीम है। और जब तुम्हारे बच्चे अक्ल की हद को पहुंच जाए तो चाहिए कि इसी तरह इजाजत लेकर आया करें जिस तरह उनके बड़े इजाजत लेते रहे हैं। इस तरह अल्लाह तो अपनी आयात तुम्हारे सामने खोलता है और वो अलीम और हकीम है। अब बूढ़ी औरतों की बात है, हम में से तो कोई बूढ़ा नहीं है ना माशाल्लाह। फरमाए वल कवायद मिनन निसाई लाती ला यरजून निकाहा, और वो औरतें जो जवानी से गुजरी बैठी हो, निकाह की उम्मीदवार ना हो, अगर वो अपनी चादरें उतार कर रख दें तो इन पर कोई गुनाह नहीं। कौन उतारेगी बुढ़ापे में जो जवानी में लेती थी? आप देखिए साइमल्टेनियसली इसमें पता चल रहा है कि जवानी में लो, और ये कौन सी चादर है जिसका जिक्र हम सूरत अलअहज़ाब में पढ़ेंगे, जिलबाब, और उसी को आप डिफरेंट नामों से सोचते हैं। तो कहा अगर बुढ़ापे में संभाल नहीं सक रही, कंधों में दर्द है, अब कमजोरियां आ गई, कशिश नहीं है ना उनमें ना किसी में, तो कोई हर्ज नहीं, वो मोटी चादरें उतार दे, बशर्ते कि जीनत की नुमाइश करने वाली ना हो। ये ना हो कि अब मैचिंग कर तो रही हैं बस ऑफ व्हाइट कलर की कर रही हैं, अब जोड़े तो बन रहे अच्छे से अच्छे लेकिन व्हाइट कलर के काम वाले जोड़े बन रहे हैं। अभी बेचारी से सुरमा लग नहीं रहा लेकिन वो लगाने की कोशिशों में दंदासा है कुछ भी, अब तक अपने ब्यूटी कॉन्शियस छुपना चाहिए। अब जिसको देख जी अब्बा उतार दे तो कोई हरज की बात नहीं, यदि जो औरत आराइश से बेनियाज है वो ठीक है, और जो बेटियां खुद अपनी जो बूढ़ी औरतें अपनी बेटियों को मशवरे दें कि दुपट्टे उतार दो और ये कर लो और वो कर लो, फिर उसको इससे एग्जाम किया गया। हाँ मगर इसमें भी एक एक्सेप्शन है, कहा ताहम वो भी हयादारी ही बरतें तो इनके हक में बेहतर है। एक आलिम थे तो उन्होंने देखे बूढ़ी औरत और खूब मोटे वो जो पहले दौर की चादरें दुपट्टे होते थे ना बुरके सफेद वो पहनी हुई थी, तो उन्होंने उनको देखकर ये आयत पढ़ी कि अम्मा आपने कुरान की आयत नहीं पढ़ी, केवल कवायद मिनन निसाई लाती ला यरजून निकाहन फलैसा अलैहिन्न जुनाहुन अन यदान सियाबहुन गैर मुतबर्रिजातिन बिज़ीना। इतनी आयत पढ़ी कि देखे अल्लाह ने इजाजत जो दी है तो आप क्यों इतना पहन रही? तो कहने लगी बेटा तुमने आयत का अगला हिस्सा नहीं पढ़ा, वही यस्ताफिफ़ना खैरुल्लहुन, बूढ़ी औरत भी बच जाए बेपर्दगी से तो ये भी उनके हक में बेहतर है। तो ये तो फिर अपने तकवे की बात होगी ना। फिर आगे खाने पीने की कुछ बातें, लैस अलल आमा हरज वल अलल आरजी हरज, और अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है, कोई हरज नहीं अगर कोई अंधा या लंगड़ा या मरीज किसी के घर से खा ले, और न तुम्हारे ऊपर इसमें कोई मजायका है कि अपने घरों से खाओ या अपने बाप दादा के घरों से या अपनी माँ नानी के घरों से या अपने भाइयों के घरों से या अपनी बहनों के घरों से या अपने चचाओं के घरों से या अपनी फूफियों के घरों से या अपने मामुओं के घरों से और अपनी खालाओं के घरों से। इन सब के ऊपर एक एक्टिविटी लिखें कि सारे रिश्ते अरबी में याद करें, ठीक है? मामू को क्या कहते हैं, फूफो को क्या कहते हैं, खाला को, और अल्लाह पे प्यार आता है कि आप सब के घर से खा सकते हैं, वो तो खुद खुश होते हैं आप उनके घरों से खाएं, अल्लाह सुब्हान तआला भी खुश होता है जब आप अपने इन रिश्तों के घरों से खाते हैं, या उन घरों से जिनकी चाबियां तुम्हारी सुपुर्दगी में हो या अपने दोस्तों के घरों से। इसमें भी कोई हरज नहीं कि तुम सब मिलकर खाओ या अलग अलग। कौन सब मिलकर? लोगों ने इसे आपको कहता है कि सेग्रीगेशन का रद्द कर दिया, देखो कुरान कहता है सब मिलकर खाओ, यानी सारी औरतें मर्द मिलकर एक ही जगह खाओ, है ना मत मरी हुई उल्टी बात। यानी सब मिलकर खाओ से मुराद क्या है कि तुम मिलकर खाओ। पहले दौर में क्या होता था कि जो बेचारे हैंडीकैप्ड लोग होते थे वो दूसरों के साथ नहीं खाते थे, कहते थे हम अंधे हैं पता नहीं हम ज्यादा खा लेंगे दूसरे का हक मार देंगे, कोई कुछ कोई कैसे कहता, अल्लाह कहते हैं नहीं सब खाओ, मिलके भी खाओ, कभी इकट्ठे खाओ कभी अलग खाओ, अलबत्ता जब घरों में दाखिल हुआ करो तो अपने लोगों को सलाम किया करो, दुआए खैर अल्लाह की तरफ से मुकर्रर फरमाई है, बड़ी बाबरकत और पाकीज़ा। इस तरह अल्लाह तुम्हारे सामने आयात बयान करता है, तवक्को है कि तुम समझबूझ से काम लो। बार बार अल्लाह का यही मशवरा है कि अक्ल से काम लो, समझ लो, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब ये तुम्हारी अपनी मर्जी है तुम क्या करते हो। आखिर में सच्चे मोमिनों की तारीफ कर दी, कौन होते हैं मोमिन, और अल्लाह मुझे आपको बना ले। और इसमें इज्तिमाई जिंदगी है, लिख लें इसका थोड़ा सा हिंट दूंगी क्योंकि बहुत अहम आयत है, और जो लोग कहीं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं, कहीं वॉलंटियर करते हैं, वो इस आयत की तफसीर जरूर सुने। कि जब दीन के कामों पे हम मिलें या जुदा हों तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीन आमनु बिल्लाहि व रसूलिही व इज़ा कानू मअहु अला अम्रिन जामिन। मोमिन तो असल में वही है जो अल्लाह और उसके रसूल को दिल से माने और जब किसी इज्तमाही काम के मौके पर रसूल के साथ हो तो इसे इजाजत लिए बगैर ना जाओ। नोट कीजिए, ये नहीं कहा कि इन्फॉर्म करके जो हम जा रहे हैं खुदा हाफिज, नहीं, यू नीड टू टेक द परमिशन। किसी को प्रोग्राम इंचार्ज बनाया, आपने उससे इजाजत लिए बगैर चले गए तो आप इस आयत के खिलाफ काम कर रहे हैं। ए नबी, जो लोग तुमसे इजाजत मांगते हैं वही अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले हैं, बस जब वो अपने किसी काम से इजाजत मांगे जिसे तुम चाहो इजाजत दे दिया करो, और ऐसे लोगों के हक में अल्लाह से दुआ मगफरत किया करो, अल्लाह यकीनन गफूर रहीम है। मुसलमानों, अपने दरमियान रसूल के बुलाने को आपस में एक दूसरे का सा बुलाना ना समझो, यानी रसूल की इज्जत करो। ऐसे ही उनके साथ बात ना करो कैजुअल मूड में जैसे दूसरों से करते हो, और रसूल तुमको बुलाए तो तुम उनकी बात सुनो। अल्लाह इन लोगों को खूब जानता है जो तुम में ऐसे हैं जो एक दूसरे की आड़ लेते हुए चुपके से सिटक जाते हैं। रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वालों को डरना चाहिए कि वो किसी फितने में गिरफ्तार ना हो जाए या इन पर दर्दनाक अजाब ना आ जाए, अल्लाह हम बचाए। इस आयत को हाईलाइट किया आपने, कितनी जबरदस्त आयत है। सुन्नतों से मुंह फेरने वालों को अल्लाह अजाब से डरा रहा है। और आखिरी आयत, अला इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाती वल अर्ज, खबरदार रहो आसमानों जमीन में जो कुछ है वो अल्लाह का है, तुम जिस रविश पर भी हो, अल्लाह इसको जानता है। 3 सेकंड गौर करें, तुम जिस रविश पर, पूरी सूरत के अहकाम को जहन में लाएं, जिस बात पे, जिस हद तक जो अमल कर रहे हो अल्लाह को उसकी खबर है। याद रखो, यौम युरजाउन इलैहि फयुनब्बियुहुम बिमा अमिलू, जिस रोज उसकी तरफ पलटाए जाएंगे वो इनको बता देगा कि वो क्या कुछ करके आए हैं। वो हर चीज का इल्म रखता है। तो माशरे को जज नहीं बनाओ, अल्लाह को जज बनाओ, वो तुम्हारे कामों को जानता है। तो ये थी सूरत नूर, जिसमें हकीकत में हमारे लिए बहुत कुछ है। पिछली सूरत नूर है तो अगली सूरत फुरकान है, दोनों मिलती जुलती सूरतें। हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि हमें इसका हक अदा करने की तौफीक अदा फरमाए। ये सवाल आया एक अदा ऑनलाइन से, घर में अंदर का पर्दा क्या है? घर के अंदर का पर्दा बाहया लिबास है, ठीक है। हाँ, घर में अगर गैर महरम रहते हैं तो उनसे वही लाइबिलिटीज हैं जो के बाहर की हैं, थोड़ा आप सेटअप चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, बाहर आप जाते हैं फुल अबाया पहनते हैं, स्काफ और हिजाब और नकाब जो भी आप करते हैं, बाहर ऐसा होता है। अब घर में अगर आप रहते हैं, मिसाल है देवर जेठ है या जिसको आप कह सकते हैं ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, तो फिर आप घर में अगर नकाब पहनेंगे तो काम नहीं होगा, या बाया पहनेंगे बाद जब उसमें और भी ज्यादा जिस्म से लगता है, तो उसका बहुत अच्छा तरीका है कि खुली बड़ी बड़ी चादरें मोटी सी ले ले और घर में ढीली ढाली वो चादरें ले। मर्दों को खुद पता है कि हमारे घर में जो सिस्टर्स हैं वो पर्दा करती हैं। मर्द बाहर से कमरे में आ रहे हैं, आप किचन में काम कर रहे हैं, आपके देवर जेठ जो भी आ रहे हैं, वो एक दफा आवाज लगा दें, सलाम कर ले, फौरन आप अब चेहरे को, अब जैसे ये कपड़ा, अब अगर आप मुझे कहें कि इसकी जगह मैं निकाब पहन लूं तो मेरा लिए निकाब में ज्यादा एक्सपोज होगा। अब ये दुपट्टा, अब मेरी चादर है, इसको आप बड़ी चादर प्लेन कर ले। तो मैंने इस तरह ली, मैं किचन में काम कर रही थी, कोई गैर महरम जो घर में रहते हैं या जहां मैं रहती हूँ वो आ गए तो वो आवाज लगाएंगे, मैं फौरन इसको यूं कर लूंगी। अब वो आके मेरे साथ यूं तो नहीं आके देखेंगे। याद रखिए, जो औरतें हयात से पर्दा करती हैं उनके मर्दों में बहुत गैरत आ जाती है। कभी आपको निकाब लेना ही नहीं पड़ता, मेरा पूरा ईमान है। हमारे घरों में माशाल्लाह हमने देखा, भाइयों को भाभियों को देखा, साथ रहते देखा, खाते देखा, पीते देखा, कुछ मसला नहीं होता। आप घर में हवा ना बनाए पर्दे को, इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स सो इजी। सिर्फ लिमिट्स मुकर्रर कर, मर्द आते वक्त इजाजत ले, और जब आप खाना खाने बैठे आमने सामने ना बैठे, मीटिंग में बैठे बिल्कुल आमने सामने ना बैठे, साइड पे बैठे, एक्सपोज ना करें, जितना भी अलग हो सके। बाकी बात करना चाहें बात कर सकते हैं, खाना पूछ सकते हैं। इस्लाम को इस तरह का मजहब नहीं है कि आपको बद तहजीब और बदतमीज बनाता है। जिस हद तक बच सकते हैं बच्चे, फत्तकुल्लाह मस्तता तुम, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला फिर उसमें जब आप शुरू करते हैं तो आसानियां भी कर देते हैं। ये लिखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि घर के अंदर बाल छुपाए हों और सिर्फ चेहरा ही खुला जाए, नजर आए, ऐसी कोई बात मैंने तो कभी नहीं पढ़ी कि औरतें यानी अकेले में भी है तो बाल ना खोलें, या अगर घर में सिर्फ आप औरतें हैं तो आप दुपट्टा ना खोलें, ऐसी कोई बात नहीं देखी गई। और आपके सामने कुरान खुला हुआ है, अगर ऐसी कोई बात होती तो अल्लाह ताला आयत का एक हिस्सा डाल देते कि कोई औरत अपने बाल भी दूसरी औरतों को ना दिखाए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। आज के लिए इतना काफी है। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.